थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैंने अपना मन को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन काली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अपने सभी नए मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या नए मित्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो भजन का संग्रह है। पिछले अध्ययन में हमने इसके परिचय और पहले कुछ पदों को देखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता एक निकाल करके रखिए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता एक उसके दो पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हमारे प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य के बारे में कहा था कि जब दुष्ट आत्मा उसे त्याग कर जाता है तब वह पुरुष अपना जीवन स्वच्छ करता है, वह उसे शुद्ध करके संवारता है और सोचता है कि अब उसके साथ कोई समस्या नहीं है। परंतु दुष्ट आत्मा अब भी उसका स्वामी है और जब वह भटकते हुए थक जाता है तो लौट आता है। इस समय वह अपने मित्रों को भी साथ में लाता है और उसके साथ उससे भी अधिक दुष्ट 7 दुष्ट आत्माएं हैं और उसकी स्थिति अब पहले से भी अधिक बुरी हो जाती है। अधिकांश विश्वासी यही सोचते हैं कि जीवन का थोड़ा बहुत शोधन पर्याप्त है, परंतु यहां ध्यान दें, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के जन का आनंद उसकी व्यवस्था पूर्ति से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में उसका आनंद परमेश्वर का वचन है। काश मैं मनुष्यों को समझा पाता कि बाइबल एक आनंददायक पुस्तक है, वह बोझ नहीं है, वह उबाने वाली पुस्तक नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसका अध्ययन करना आनंद प्रदान करता है। धन्य वह है, वह पुरुष आनंदित रहता है, वह पुरुष जिसका सुख परमेश्वर की व्यवस्था में है। आज मनुष्य की त्रासदी है, उसकी थकान, उसकी आहें, उसका कराहना, उसका सिर दर्द, उसका दिल दुखना, टूटे परिवार, नाश हुए जीवन आदि सब परमेश्वर के नियमों के उल्लंघन का परिणाम है। पहला योना की पत्री 5 अध्याय उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। विश्वासियों के लिए उसकी आज्ञाएं 10 आज्ञाओं तक ही सीमित नहीं है। उसकी आज्ञाओं का पालन करना कोई बोझ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने का अर्थ है कि आप निरंकुश जीवन जिए, अपनी इच्छा पूर्ति का जीवन जिए, परंतु परमेश्वर का वचन यह शिक्षा नहीं देता है। गलातिया प्रदेश की कलिसियाओं को पौलुस ने लिखा, जहां पर हम पढ़ते हैं 5 अध्याय के 13 में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जी हाँ, स्वतंत्रता का अर्थ भोग विलास नहीं है। निसंदेह हम उद्धार पाने के लिए 10 आज्ञाओं पर निर्भर नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनका उल्लंघन करें। इसका अर्थ वास्तव में यह है, मेरे मित्रों, कि हम परमेश्वर की व्यवस्था में खरे नहीं उतरेंगे। परमेश्वर को सिद्धता चाहिए जो आप में और मुझ में कभी नहीं आ सकती। हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आना है। विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के बाद हमें एक ऊंचे स्तर तक जीवन जीना है जो व्यवस्था से भी ऊंचा है। हमें अपने जीवन में आत्मा का फल लाना है जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, भलाई, विश्वास योग्यता, दीनता और संयम है। हमारा अनुशासन और मार्गदर्शन अनुग्रह के द्वारा ही होता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान का अर्थ है गाय का पागुर, अर्थात पागुर करना। मुझे किसी ने बताया कि गाय के पेट में अनेक भाग होते हैं। वह दिन के ठंडे समय घास खा लेती है और जब दिन गर्म हो जाता है तब वह किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठकर पागुर करती है। वह चारा फिर से मुंह में लाकर उसे चबाती है, अर्थात चारे पर फिर से कार्य करती है। ध्यान करने का अर्थ यही है कि हमने वचन में जो भी पढ़ा है उसे मस्तिष्क में फिर से लाकर उस पर विचार करें। थॉमस ए कैंपिस ने हास्यपूर्वक कहा, मुझे अकेले में इस पुस्तक के बिना शांति नहीं। 1988 में बर्थोलमी एशुवुड ने कहा, ध्यान करना पागुर करना है। ओह, आज विश्वासियों के जीवन में इसकी कैसी महान आवश्यकता है, आपके लिए, मेरे लिए। याकूब कहता है 1 अध्याय उसके 24 पद में कि मनुष्य दर्पण में अपना चेहरा देखने के बाद शीघ्र ही भूल जाता है कि वह कैसा दिखता है। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते रहना है। क्योंकि वह परमेश्वर का दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कैसे दिखते हैं। हमें परमेश्वर के वचन से अपना जीवन संवारने देना चाहिए। हम पढ़ते हैं, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास वचन की अपेक्षा अन्य कोई मार्ग नहीं कि एक विश्वासी का विकास और उन्नति हो। आप अपने कलीसिया में दीमक की नाई व्यस्त हो सकते हैं और वैसा ही प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु आप कार्यों द्वारा विकासमान नहीं हो सकते। आप केवल परमेश्वर के वचन पर ही निर्भर करने के द्वारा विकासमान हो सकते हैं, अर्थात बार बार उस पर ध्यान करके, जब तक कि वह आपके जीवन का भाग न बन जाए। यह एक आनंदित मनुष्य का अभ्यास है। आइए हम आगे देखेंगे, धन्य पुरुष का सामर्थ। उसे सामर्थ कहां से प्राप्त होता है? भजन संहिता 1 उसके 3 पद में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। धन्य पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नाली इब्रानी में बहुतायत की अतिशयोक्ति है। धन्य पुरुष अच्छे पोषण के द्वारा एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। परमेश्वर के वृक्ष लगाए हुए वृक्ष होते हैं, वे जंगली वृक्ष नहीं है। मेरे विचार में यह उपमा नया जीवन पाने की है। यशाया की पुस्तक 61 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के वांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर जंगली वृक्षों को काम में नहीं लेता है। उसके वृक्ष नया जन्म प्राप्त होते हैं जिन्हें निकाल कर परमेश्वर की वाटिका में बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। बहती नालियों का अर्थ क्या है? यह परमेश्वर का वचन है। किसी ने पूछा, क्या आप विश्वास के साथ यह कह सकते हैं? मैं यह जानता हूं, क्योंकि यशाया के पुस्तक 55 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन वर्षा के समान बरसे। रेडियो इस संबंध में अत्यधिक सार्थक है। वह दूर दूर तक प्रसारण करता है। हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है और वह निश्चय ही फल लाएगा। वह वृक्षों का विकास करेगा। वचन जल और पोषण प्रदान करता है। वह शोधन करता है। आप वचन द्वारा जल के स्थान को भजन 104 उसके 16 में देख सकते हैं। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लवानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। भजनकार परमेश्वर के वृक्षों को पौधे नहीं कहता है, वह उन्हें पूर्ण विकसित वृक्ष कहता है जिनमें रस भरा है। यह रस परमेश्वर का वचन है। लवानोन के वृक्ष जिन्हें परमेश्वर ने रोपा वे वचन से परिपूर्ण है। आगे हम देखते हैं, और अपने ऋतु में फलता है। यह ध्यान देने योग्य एक रोचक बात है कि परमेश्वर के वृक्ष हर समय फल नहीं देते हैं, वे अपने ऋतु में ही फल लाते हैं और उनकी शक्ति परमेश्वर के वचन से आती है। मैंने इससे गतिविधियों और तनाव के युग में सुना है कि विश्वासी का मुख्य कार्य है आत्माएं जीतना। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 14 से 16 पद में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। भला इन बातों के योग्य कौन है? मैं तो नहीं हूं, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि मुझे वचन के प्रसार की बुलाहट है और मनुष्यों को मसीह में लाना पवित्र आत्मा का काम है। हम अपने रेडियो प्रसारण द्वारा असंख्य मनुष्यों को मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं और मसीह के पास आता हुआ देख रहे हैं। यह देख मुझे अचंभा होता है, क्योंकि हम तो उन्हें पकड़कर नहीं लाते हैं, हम केवल वचन सुनाते हैं और हमारा परमेश्वर हमें जय प्रदान करता है। अब यदि कोई मसीह को ग्रहण न करे तब हम उद्धार पाने वालों के लिए जीवन की सुगंध है और नाश होने वालों के लिए मृत्यु की गंध है। मेरा उत्तरदायित्व है कि वचन सुनाओ, और सुनकर क्या करना है यह आपका दृष्टिकोण है। जब मैं कलीसियाई सेवा में परमेश्वर के वचन की सेवकाई देता हूँ, तब मैं निमंत्रण देते समय कहता था, यदि आप यहाँ से उद्धार रहित प्रस्थान करेंगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के बाद यह नहीं कहेंगे कि आपने सुसमाचार नहीं सुना। मैं वास्तव में आपका बैरी हुआ, क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं कह सकते कि आपने उसका वचन कभी नहीं सुना। मेरे मित्रों, आपका काम केवल वचन देना है, और वह वचन सुनकर क्या करेगा यह उसका काम है, परंतु वह परमेश्वर को लेखा अवश्य देगा। परमेश्वर कहता है कि हम वचन सुनाए। मैं वर्षों से यही काम करने का प्रयत्न कर रहा हूं। कुछ का उद्धार अवश्य हुआ है, परंतु कुछ उद्धार से चूक गए हैं। एक कलीसिया में सेवा के दौरान स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी कि आराधना के बाद एक प्रतिष्ठित वकील ने आकर उनसे कहा, आप और मैं पुराने जमाने से इस शहर में हैं, जब यहाँ घोड़ा गाड़ी चलती थी। मैं आपके सामने अंगीकार करना चाहता हूँ, मैं अपनी युवावस्था में आपका प्रवचन सुनने आता था और आप भी जवान थे, परंतु आप मुझे विचलित करते थे। कई बार मैं आराधना के बाद घर जाकर सो नहीं पाता था। आज आप अमेरिका के महान प्रचारक हैं, परंतु मैं आपको सुनकर विचलित नहीं होता हूँ। वह हंसकर आगे बढ़ गया। मेरे मित्र, ऐसा वकील बनने से घृणा करता हूँ। वह चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, परमेश्वर के समक्ष प्रतिवाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अमेरिका के सबसे बड़े प्रचारक से वचन सुना जो प्रचार मंच के राजकुमार कहलाते थे। उस वकील ने 50 वर्ष तक उनसे वचन सुना था और अंत में उसने कहा, तुम्हारा प्रचार मुझे विचलित नहीं करता है। उस प्रचारक ने अपना उत्तरदायित्व निभाया है। मेरे मित्रों, विश्वासी का प्रमुख कार्य है वचन का प्रचार करना, न कि आत्माएं जीतना। वह अपनी ऋतु में फलता है। जी हाँ, वृक्ष के फलने की ऋतु होती है। मेरे घर पर एक कटहल का पेड़ है। एक ऋतु में उसमें आवश्यकता से अधिक फल लगे, परंतु एक महीने बाद उस पर एक भी फल नहीं था। वह अपनी ऋतु में फल लाता है। यही कारण है कि बीज के बोने और उगने में तैयारी का लंबा समय होता है कि उसे फल लाने में सहायता मिले। ट्रैक्ट बांटना या पर्चे बांटना अपना महत्व रखता है, परंतु मेरे मित्रों, हमें वचन का प्रचार करना है, उसकी देखरेख में समय लगता है। वृक्ष को अपनी ऋतु में फल लाने के लिए बहुत देखरेख की आवश्यकता होती है। वह आगे कहता है, भजनकार जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पत्ते मसीही विश्वासी की गवाही के प्रतीक हैं। यह सर्वथा प्रकट होना है। परमेश्वर के वृक्ष सदा बहार होते हैं, उनकी गवाही व्यर्थ नहीं होती। मेरा मित्र जो बाइबल अध्ययन के समय शहर के एक सुप्रसिद्ध आराधनालय में गया, वह रविवार की आराधना में वहां गया तो उसने प्रवेश द्वार पर लिखा देखा, स्वर्ग का द्वार, और उसके नीचे लिखा था, जुलाई और अगस्त में बंद रहेगा। विश्वासियों के वैयक्तिक जीवन में ऐसा प्रायः होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, आप सदा बहार हैं। आपके पत्ते इस संसार में आपकी मसीही गवाही हैं। परमेश्वर के संतान सदा बहार हैं, और वह कहता है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी प्रजा को सांसारिक आशीषें देने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु विश्वासियों के लिए ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है। यदि आप आशीषित हैं तो आप उसे धन्यवाद दें कि उसने आपको प्रतिज्ञा से अधिक संवारा है। जॉन ट्रप ने कहा, यदि सांसारिक आशीषें परमेश्वर की घनिष्ठता का परिणाम है तो यह एक अति मृदुल बात है जैसे कि किसी अंक के पीछे शून्य का मान बढ़ जाता है, अन्यथा अपने आप में वह कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मसीह को ग्रहण करना, वह एक का अंक है। सांसारिक आशीषें सब शून्य हैं। यदि आपके पास शून्य के आगे एक का अंक नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। परंतु यदि आप अपने सांसारिक आशीषों के आगे एक अंक लगा देते हैं, अर्थात मसीह यीशु को रखते हैं, तो निश्चय ही आप धन्य हैं। परंतु यह कभी ना भूलें कि मसीह ने इस संसार में आपको आशीषें देने की प्रतिज्ञा नहीं की है। धन्य पुरुष की अस्थाई अवस्था अधर्मी की असुरक्षा पर ध्यान दें। आइए देखें भजन संहिता 1 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उसी भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। दो प्रकार के पुरुष, दो मार्ग और दो गंतव्य। एक के मृत्यु का बंद मार्ग है, दूसरा जीवन का मार्ग है। परमेश्वर बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम आज सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर बदलता नहीं, वह अटल है। उसका वचन नई पीढ़ी के दर्शन शास्त्र के साथ बदलता नहीं है। भजन संहिता 1 उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि यह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नष्ट का अर्थ है पथ भ्रष्ट होना। यह एक अद्भुत अंत है। नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हमें चिताया गया है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उस मार्ग से प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जी हाँ, चौड़ा मार्ग जनाजे का मार्ग है, जो आरंभ में चौड़ा है और संकरा होते होते मृत्यु तक पहुंचता है। परंतु सकेत फाटक, जिसमें आप मार्ग जीवन और सत्य मसीह यीशु के साथ प्रवेश करते हैं, और वह आगे चलकर चौड़ा होता जाता है और जीवन की ओर जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 पद में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इससे पहले भजन में धन्य पुरुष, आनंदित पुरुष का कैसा महिमामय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 2 से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। अध्याय 2 में हम देखेंगे प्राचीन कथा, परमेश्वर से मनुष्य का विद्रोह। भजन संग्रह में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पुस्तक क्रमवार व्यवस्थित है। पहले भजन में एक धन्य पुरुष अर्थात आनंदित मनुष्य का व्यवहार दर्शाया गया है, और मेरे विचार में यह प्रभु यीशु मसीह अंतिम आदम का चित्रण है। अब इस सिद्ध पुरुष के विपरीत हम भजन 2 में विद्रोह मनुष्य का विवरण देखते हैं। हम इसे भजन संग्रह का उत्पत्ति अध्याय कह सकते हैं। उत्पत्ति का आरंभ अदन की वाटिका में एक आनंदित पुरुष से होता है, परंतु वह विद्रोही हो जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। अब वह परमेश्वर को नहीं खोजता था, उसमें परमेश्वर ग्राह्यता नहीं रहती है। भजन 2 में हम आदम की संतान को देखते हैं, मानव जाति को। भजन 2 को प्राचीन कथा कहा गया है, जो युगों से चलता चला आ रहा है, मानवीय व्यवहार है। इसमें घटनाओं के परिणाम की निश्चित घोषणा की गई है और उन शक्तियों की उल्लेख है जो इस संसार में काम करती हैं। भजन नाटक की अपेक्षा एक टीवी कार्यक्रम के अधिक सदृश है। इसका प्रदर्शन कुछ इस प्रकार किया गया है कि मानो एक कैमरा पृथ्वी पर लगा हो और एक स्वर्ग में, या ऐसा है जैसा किसी दृश्य का जीता जागता प्रदर्शन किया जा रहा हो, या अत्यधिक उत्साहवर्धक और दर्शनीय है। भजन 2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की कल्पना से परे दो कैमरे बड़े ही दर्शनीय रूप से प्रयोग कर रहा है। पहला कैमरा पृथ्वी पर है और जब वह चालू होता है तब हम जन समूह की पुकार सुनते हैं। हम अदन में मनुष्य को उसकी तुक्ष भूमिका निभाते हुए देखते हैं, जैसा नाटककार शेक्सपियर कहता है। एक असहाय अभिनेता मंच पर अपने समय को पूरा करने में कष्ट उठाकर गर्वीली चाल चलता है। अकिंचन मानव या दुष्ट मानव अब पृथ्वी का कैमरा बंद हो जाता है और स्वर्ग का कैमरा चालू होता है। अब हम पिता परमेश्वर को कुछ कहते हुए सुनते हैं। परमेश्वर के बाद कैमरा उसके दाहिने ओर बैठे पुत्र पर परमेश्वर केंद्रित कर देता है और वह कुछ कहता है। अब स्वर्ग का कैमरा बंद होता है और पृथ्वी का कैमरा फिर चालू होता है और अंत में पवित्र आत्मा अपनी बात कहता है, कैमरा मानव जाति पर। अब हम इस प्रदर्शन को देखें। यह पहला कैमरा है और पृथ्वी पर लगा हुआ है। पहले पद में हमारे सामने एक प्रश्न रखा जा रहा है, भजन संहिता 2 उसके 1 पद में, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। ध्यान दीजिए, जाति जाति के लोग अर्थात अन्य जातियां क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग यहूदी लोग क्यों व्यर्थ की बातें सोचते हैं। यहाँ व्यर्थ की बातों का अर्थ है अन्य जातियों को क्रोध दिलाने वाली बात, जिसके कारण मनुष्य एक महान विद्रोह अभियान में है जो कभी पूरा नहीं होगा अर्थात सफल नहीं होगा। मनुष्य का यह सहयोग व्यर्थ है। तो क्या है मेरे प्रिय मित्र, आज मुझे और आपको अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है कि हम किस कैमरे के सामने किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक वृक्ष फल लाए। क्या आप उस दुष्ट वृक्ष के समान है या भले वृक्ष के समान है जो समय पर फल देता है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं
उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन इश्क दे दिया, आज से मैं उसके लिए